बहुत बहुत धन्यवाद विशु भाई। रेडियो साई के सभी श्रोताओं को हमारा सादर सप्रेम साई राम। यह है रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी और मैं अभिषेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पराभव नामक नववर्ष विक्रम संवत 2070 के उपलक्ष में अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सतसाई बाबा जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए मैं कामना करता हूं कि यह नूतन वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और आप सभी को हमारे आज के साप्ताहिक सीधे प्रसारण के अंतर्गत हिंदी भाषा में होने वाले प्रसारण पर आमंत्रित करता हूं। प्रिय श्रोताओं, हमारे आज के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के भक्तों द्वारा गत वर्ष 23 दिसंबर को साई कुलवंत हॉल में प्रस्तुत किया गया साई संजीवनी नामक नाटक प्रसारित किया जाएगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है साई संजीवनी।
भगवान बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज की इस सांस्कृतिक संध्या में सर्वप्रथम आपके समक्ष एक संगीत नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जीवन के लिए संजीवनी। इस नाटक के माध्यम से इस धरती पर अवतरित सभी अवतारों के जीवन संदेशों को कलियुग की सांसारिक समस्याओं से जोड़कर समस्याओं का निराकरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि मनुष्य अवतारों के संदेश को ध्यान में रखे तो समस्याएं क्षणिक होंगी। संजीवनी हमारे आराध्य अवतारों का मानव जीवन के लिए इस कलियुग में एक संदेश है, जिसके द्वारा हम शाश्वत सत्य को अनुभूत कर जीवन उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यह नाटक छत्तीसगढ़ के 47 युवाओं द्वारा प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान बाबा के श्री चरणों में अर्पित है। जय साई राम।
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवरणं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं
विठ्ठला नारायणा
विठ्ठला नारायणा
नारायणा हरि नारायणा
नारायणा हरि नारायणा विठ्ठला
मधुसूदना नारायणा విఠల నారాయణ పని సరి సనిద పని దప మగరి సా నిజరే పమగరి స నిజరే మ పని స పని సరి సని స మ పని దప మ ప రిని దప మగరి పమగరి స నిజ పని స రే మ ప పని స రే మ ప సరే పని స పని సరే మగరి స నిజ రే మ పని దప మ పని సరే మగరి స నిజ దప మగరి స పని సరే మగరి స నిజ రే మ పని దప మ పని సరే మగరి స నిజ దప మగరి స పని సరే మగరి స నిజ రే మ పని దప మ పని సరే మగరి స నిజ దప మగరి స
नारायण नारायण जगत के संचालक श्री हरि विष्णु जी को मेरा कोटि शत प्रणाम।
ओह नारद जी आई आई वैकुंठ धाम में आपका स्वागत है। तो आखिर आपको हमसे मिलने के लिए समय मिल ही गया। आजकल तो आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। आखिर किस लोक में भ्रमण कर रहे थे मुनिवर?
प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, आखिर इस सृष्टि में ऐसा क्या है जो कि आपकी दृष्टि से परे है प्रभु? तो फिर आप मुझे इस प्रकार के प्रश्नों में क्यों उलझा रहे हैं?
प्रश्नों में हम क्या, आप ही सबको अपनी बुद्धि और वाणी से उलझा देते हैं मुनिवर। वैसे अगर आप यहां वैकुंठ धाम में आए हैं तो कुछ न कुछ विशेष कारण तो जरूर होगा। कहिए मुनिवर, क्या चल रहा है आपके मन में?
प्रभु मेरी चिंता का विषय यह है कि कलयुग अब अपने चरम प्रभाव पर है। मनुष्य में मानवता का भाव ओझल होता सा दिख रहा है। वह अधर्म को धर्म और अनीति को नीति मान बैठा है। असंतुष्ट और व्याकुल मन में सुख की खोज कर रहा है।
भाग्यम भाग्य।
हे प्रभु, आपने इतने अवतार इस धरती पर लिए, मानव के समक्ष रहकर अपने जीवन को अपना संदेश बनाकर उन्हें जीवन के सत्य को समझने के लिए प्रेरित किया, परंतु ऐसा लगता है कि उन मूल्यों और शिक्षाओं को मानव जाति भुला चुकी है प्रभु। अब उन्हें असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर लाने के लिए दिव्य मार्गदर्शन की आवश्यकता है।
आपने सत्य ही कहा नारद जी, परंतु मुनिवर इस विषय में मैं उनका भाग्य परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि उनके भाग्य के निर्माण का कार्य तो मैंने स्वयं उनके हाथों में दे दिया है। वो स्वयं अपने कर्मों का फल भोगते हैं। हाँ, अगर आप मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं तो मुनिवर आपसे अच्छा मार्गदर्शक तो और कोई हो भी नहीं सकता। इसीलिए मुनिवर अब आप ही पृथ्वी पर जाएं और मनुष्यों का मार्गदर्शन करें।
जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा।
जाइए जाइए नारद जी, आपकी पृथ्वी यात्रा मंगलमय है।
नारायण
रहे
नारायण भेज रहे नारद को पृथ्वी की ओर, नारायण भेज रहे नारद को पृथ्वी की ओर, जूझ रही जहां मानवता जीवन से अनमोल, कलयुग है कितना घनघोर, कलयुग है कितना घनघोर, नारायण भेज रहे नारद को पृथ्वी की ओर। नारद की चिंता को देख कर प्रभु बोले, जाकर याद दिलाओ मानव को, अब तक के अवतारों में मैंने जो संदेश दिया है जन जन को, मेरा पथ ही पहुंचाए मानव को सुख की ओर, कलयुग है कितना घनघोर, कलयुग है कितना घनघोर।
नारायण नारायण, प्रभु ने भी ये कैसा जटिल कार्य दे दिया है। यहाँ तो सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी को मार्गदर्शन की ना तो जरूरत है और ना कुछ सुनने समझने का समय।
क्यों, मजा आया कि नहीं?
मजा आया, मजा आया।
अरे भाइयों, देखो देखो, लगता है शहर में कोई नाटक होने वाला है, वरना नारद जी के दर्शन वो भी धरती पर असंभव ही है।
लगता है नाटक करके अभी अभी निकला है, अपने कपड़े और गेटअप चेंज करना भी भूल गया है।
नाटक? कौन सा नाटक? अरे नहीं नहीं, हम कोई नाटक वाटक करने वाले नहीं हैं। अरे भाई, क्या आप बता सकते हैं यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? बड़ी गर्मी है पृथ्वी लोक पर।
पृथ्वी लोक पर? अच्छा, तो तुम दूसरे लोक से आए हो?
हाँ हाँ, बेशक, इस धरती के तो लग भी नहीं रहे हो।
जरा ये तारा दिखाना, असली है कि नकली, बजता भी है कि नहीं?
हाँ हाँ, हम बैकुंठ धाम से आए हैं। हमारे प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने हमें मानव जाति के मार्गदर्शन और कल्याण के लिए इस धरती पर भेजा है।
अच्छा, तो हो गया मार्गदर्शन का कार्य।
अरे सबसे ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत तो हमें है, आप हमें भी कुछ ज्ञान दीजिए ना मुनिवर।
ये लो पानी पियो।
आत्मा तृप्त हो गई। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु।
भाई लगता है तुम अपना रास्ता भटक गए हो।
चलो हम ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर देते हैं।
तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, तुम घर जाओ और आराम करो।
हाँ हाँ, घर जाओ और आराम करो।
घर का रास्ता तो पता है कि हम ही ले चले। नारद का रोल प्ले करते करते शायद उस कैरेक्टर में इतना घुस गया है कि खुद को साक्षात नारद समझ बैठा है।
ये मुझे बेचारा कह रहे हैं, जबकि मैं तो इनके ही कल्याण के लिए धरती पर आया हूँ। अच्छा तो ये बात है, लगता है मनुष्यों को भगवान का संदेश देने के लिए मुझे उन्हीं के जैसे दिखना पड़ेगा, शायद तभी वो मेरी बात सुनेंगे। नारायण नारायण। हे प्रभु, अब आप ही बताएं, मैं ऐसे व्यक्ति को कैसे ढूंढूं जिसे आपके संदेश की जरूरत है?
कदापि चिंता न करे मुनिवर, आपको सिर्फ प्रतीक्षा करनी होगी। आखिर प्यासा स्वयं किसी न किसी माध्यम से नदी के निकट पहुंच ही जाता है। नदी को कहीं जाना नहीं पड़ता है, थोड़ा देखते हुए जाइएगा।
नारायण नारायण, ये कैसे मार्ग हैं? यहां तो चलने की जगह कम और गिरने के लिए गड्ढे ज्यादा हैं। पता नहीं कैसे जीते होंगे मनुष्य यहां। ये कैसा संचालन है विष्णु जी का। अरे भाई, अरे मुझे माफ कर दीजिए।
नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस आप मेरी वो छड़ी उठा देंगे क्या?
हाँ हाँ, ये लीजिए। अरे ये तो मुड़ गई है, अब शायद ये आपके काम ना आ सके। अरे आपको तो चोट भी आ गई है, मेरे कारण एक तो आप गिर गए, आपकी छड़ी भी मुड़ गई और सारा सामान भी फैल गया है।
कोई बात नहीं, मैं यहां से कुछ दूसरा इंतजाम कर लूंगा, बस आप मुझे उस बेंच पर बिठा दीजिए।
आपका मेरी वजह से इतना समय खराब हुआ और नुकसान भी हो गया। बताइए कहां जाना चाहते हैं आप, मैं आपको लेकर चलता हूं। बताइए।
मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, पर आप मेरे लिए अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं?
अरे मेरी वजह से आप घायल हुए हैं, मैं आपको लेकर चलता हूं। चलिए।
क्यों भाई, क्या पूछा आपसे, कैसा रहा इंटरव्यू?
अरे भाई इतना भी नहीं पूछते हैं कहीं पर, अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू दे चुका हूं, इतनी छोटी सी कंपनी है और नखरे ज्यादा।
नेक्स्ट विजय।
अरे वाह क्या बात है, क्या क्वालिफिकेशन है और अनुभव भी काफी अच्छा है, ऐसा प्रोफाइल भी कम ही देखने को मिलता है। क्या बात है, लगता है यही सही व्यक्ति है इस जॉब के लिए। आखिरकार मुझे मेरा मनमाफी व्यक्ति मिल ही गया। अच्छा तो आप विजय हैं, बैठिए बैठिए।
जी हाँ मैं ही विजय हूँ।
वैसे काफी तकलीफ हुई होगी आपको यहाँ तक आने में?
नहीं सर ज्यादा नहीं।
ये जो आपके साथ आए हैं क्या हमेशा आपके साथ ही रहते हैं?
नहीं सर, ये तो इंसानियत के नाते आज मेरे साथ यहाँ मुझे इंटरव्यू दिलवाने ले आए हैं।
अच्छी बात है, ऐसे भी इंसान है आज के जमाने में। देखिए आपकी क्वालिफिकेशन तो काफी अच्छी है, काम का अनुभव भी है, पर आपकी शारीरिक निर्बलता के कारण हम आपको ये नौकरी नहीं दे सकते। देखो भाई बुरा मत मानना। हाँ
नहीं सर कोई बात नहीं, एक पढ़े लिखे इंसान का अपंग होना उसकी लाचारी नहीं होती, ये बात सिर्फ कुछ ही लोग समझ पाते हैं। चलो भाई चलते हैं यहां से।
नहीं विजय जरा रुको तो। परंतु महाशय हम जब अंदर आ रहे थे तब तो आप बड़ी खुशी से कह रहे थे कि शायद मुझे अपनी इस नौकरी के लिए सही व्यक्ति मिल गया है, तो फिर सिर्फ विजय की शारीरिक निर्बलता के कारण आप उसके साथ पक्षपात क्यों कर रहे हैं?
भाई देखो मैं तो अपना हर काम राम का काम समझ कर ही करता हूँ, और राम का काम करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से परिपूर्ण व्यक्ति की तो जरूरत होती है ना।
अच्छा अच्छा, तो आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं?
भक्त क्या, सेवा की समझ लीजिए, वो तो मालिक है, मैं तो बस उनका काम उनके सेवक की तरह कर रहा हूँ।
अगर आप सेवक बनकर उनका कार्य कर रहे हैं तो आपको अपना कार्य ठीक उसी तरह करना चाहिए जिस तरह प्रभु श्री राम करते थे, आप शायद भूल गए हैं। चलिए मैं ही याद कराई देता हूँ, भगवान के सेवक और सेना के रूप में प्रभु श्री राम ने बंदरों को चुना था, अगर वो चाहते तो देवताओं और शूरवीर मनुष्यों की सेना बना सकते थे, पर उनके इस निर्णय के पीछे भी तो कुछ कारण कुछ संदेश छुपा होगा ना।
मैं कुछ समझा नहीं।
तो चलिए अब शायद मुझे ही आपको इस घटना से अवगत कराना होगा।
भैया हमें इतना विशाल सागर पार करना है, लंका नरेश रावण के मायावी दानवों से युद्ध करना है, और आप यहाँ मौन और निश्चिंत बैठे हैं, ऐसा क्यों?
लक्ष्मण तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो, हम सागर भी पार करेंगे, युद्ध भी लड़ेंगे, और सीता को वापस भी लाएंगे।
व्यर्थ की चिंता, हम सागर पार आखिर कैसे करेंगे?
सेतु बनाकर।
सेतु बनाकर इतने कम समय में? आखिर कैसे और कौन बनाएगा ये सेतु?
हमारी वानरों की सेना बनाएगी सागर सेतु। ये कार्य तो इन वानरों के लिए उतना ही सरल है जितना कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना। और युद्ध युद्ध होगा, हम विजयी होंगे, और युद्ध भी यही वानरों की सेना ही करेगी।
परंतु प्रभु, ये बंदर आखिर सेतु का निर्माण कैसे करेंगे?
जरा पीछे मुड़कर देखो लक्ष्मण, पुल के निर्माण का कार्य तो प्रारंभ भी हो गया है। लक्ष्मण, मेरा कार्य करने के लिए योग्यता से ऊपर उठकर जो गुण आवश्यक है वे है श्रद्धा, सामर्थ्य। अगर किसी के पास श्रद्धा है तो सामर्थ्य उसे मैं देता हूं। इन वानरों की श्रद्धा भक्ति के कारण ही मैं इनके द्वारा स्वयं अपना ये कार्य कर रहा हूं। जरा ध्यान से देखो लक्ष्मण, क्या तुम्हें पुल बनाते हुए अभी भी वानरों की सेना ही दिखाई दे रही है?
आप धन्य हैं प्रभु, सत्य ही है, भक्ति में ही सच्ची शक्ति है।
तो महानुभाव, कुछ समझ आया आपको? जब भगवान अपना कार्य निश्चिंत रूप से वानरों से करवा सकते हैं, युद्ध लड़ सकते हैं, तो क्या आप विजय की श्रद्धा और समर्पण के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं?
मुझे माफ कर दीजिए महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं राम की भक्ति तो कर रहा था पर उनकी भक्ति को भूल गया। मैं विजय को इसी वक्त नौकरी पर रख लेता हूं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप कौन हैं, कहां से आए हैं ये मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि जरूर भगवान ने ही आपको मेरी सहायता के लिए चमत्कारिक रूप से भेज दिया। अगर भविष्य में मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे बेहद खुशी होगी। कभी भी अगर आपको कोई भी मदद की आवश्यकता हो तो कृपया मुझे याद करिएगा।
मैंने तो केवल अपना कार्य किया है। हाँ, परंतु अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो जब कभी कहीं भी मौका मिले सबकी मदद करना। क्या पता किस रूप में ये मदद मुझ तक पहुंच जाए।
अगर समर्पण भाव रहे मन माहे सब कुछ संभव हो जाए जग माहे। तनिक बिछू नहीं पाए विपदा जो आई मन में लगन तो संग चलत रघुराई। तो मन के अंधियारे में होवत है सुख की भोर। कलयुग है कितना घनघोर।
ओम त्रयम्बकम् यामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्।
हाँ जी,
कहाँ
पर? कब से? अच्छा कैसे पिताजी, घंटी जरा धीरे बजाइए ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सुनिए सुनिए, कुछ आवाज नहीं आ रही है। मैं थोड़ा बाहर के कमरे में निकलता हूँ।
बेटा बाहर जा रहा है तो 2 किलो टमाटर, 3 किलो प्याज और कुछ सब्जी भी लेते आना।
माफ कीजिए, अब बताइए। अच्छा कब, कैसे? हाँ हाँ हाँ,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लो आ गया बुलौवा डॉक्टर साहब का। ओम नमो नारायणाय, आज के दिन कहीं नहीं जाने का वचन दिया था, पता है ना कि भूल गया? आज सुबह घर में कथा है, शाम को भंडारा और प्रवचन भी है। करीब 30 से 40 मेहमान आने वाले हैं, वे सब पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे भला?
सुनिए, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ मैं आपको कॉल करता हूँ।
तो अब तेरे किस मरीज का फोन आया था? हमेशा की तरह पैसा लेने से तो रहा तू।
पिताजी कोई मुसीबत में है, और उसे मेरी जरूरत है, मुझे अभी जाना होगा।
लो और सुनो, घर की शांति और बच्चों की तरक्की के लिए पूजन हवन करवाओ और बच्चे ही न दर्द, आपके ही लाड़ प्यार ने बिगाड़ा है इन्हें।
अर्जुन एक बात समझ ले, हम उच्च कुल के ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों का सबसे पहला धर्म है पूजा हवन करना, ना कि लोक सेवा करना।
पिताजी मैं एक ब्राह्मण होने से पहले एक इंसान हूँ और इंसान होने के नाते मुझे किसी की मदद के लिए जाना ही चाहिए।
हाँ हाँ, एक ही तो नाता है तेरा डॉक्टर और मरीज का, बाकी सब नाते रिश्तेदार तो फालतू हैं, है ना? सबसे बड़ी गलती तो आपने करी है अर्जुन के बापू, इसे डॉक्टरी पढ़ाकर। और पढ़ाओ डॉक्टरी।
अब मुझ पर क्यों बरस रही हो, लाखों रुपया खर्च करके डॉक्टरी पढ़ाया ये सोचकर कि डॉक्टर बन के पैसे कमाएगा, पर इस बद दिमाग पर लोक सेवा का भूत जो सवार है, ये मत भूलो अर्जुन की माँ, तुम्हारे भी संस्कार है इसमें।
पिताजी मुझे अभी जाना पड़ेगा, किसी पेशेंट को मेरी जरूरत है।
देखा पिताजी आपने, देखा, आपके लाख मना करने पर भी भैया घर के लोगों को दुख पहुंचाकर बाहर सेवा करने जा रहे हैं।
अपने घर को संभाल ले, घर के लोगों को खुश रखेगा तो तेरा जीवन सवर जाएगा।
मैं आपकी खुशी के लिए किसी की जान के साथ तो नहीं खेल सकता।
भैया आप पिताजी से इस तरह जबान लड़ाकर बात नहीं कर सकते, गलती करोगे तो सुनना तो पड़ेगा ना। आजकल सबसे बड़ा भगवान पैसा होता है भैया, पैसा। और तुमने तो दानवीर कर्ण बनने का फैसला ही ले लिया है ना?
अरे देख देख, सीख कुछ इससे।
अगर छोटे को डॉक्टर बनाया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।
जाओ जाओ, शौक से जाओ, और कुछ नहीं तो गाड़ी का पेट्रोल ही फूंक के आ जाओ। जाओ जाओ,
इस घर में तो बात करना भी बेकार है। देख कर नहीं चल सकते क्या? आजकल लगता है लोग अपनी आंखें सिर के पीछे लगाकर घूमते हैं।
माफ करना भाई, गलती हो गई।
नहीं नहीं, इस पृथ्वी पर किसी और की गलती तो हो ही नहीं सकती, सबसे बड़ी गलती तो मेरी है। अरे अर्जुन, तू डॉक्टर बना ही क्यों?
क्या तुम्हारा नाम अर्जुन है?
हाँ, क्यों, तुम्हें उससे क्या लेना देना? अगर कोई तुम्हें परेशानी है तो जाओ, मैं अभी किसी का इलाज नहीं कर सकता, जाओ।
अब देखो ना भाई, आजकल तो अच्छों के साथ अच्छा होता ही नहीं है, सबको खुश करने के चक्कर में खुद अपने मन की शांति भंग हो जाती है।
हाँ बिल्कुल ठीक, मैं भी तो यही कहना चाहता था। डॉक्टरी क्या पढ़ ली, सिर दर्द मोल ले लिया मैंने। अपनों को कोई बात समझाने से अच्छा है किसी राह चलते को अपनी बात बताना। अच्छी मुसीबत है, न घर में सुख न बाहर शांति, हर जगह अशांति ही अशांति।
लगता है हर युग में अर्जुन का हताश हो जाना या परिस्थितियों से हार मान लेना निश्चित या तय है। अब देखो ना, एक आप हो और एक वह अर्जुन था।
हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मुझ में तो इतना साहस भी नहीं है कि जो मेरे अपने मेरे सामने खड़े हैं मैं उन पर ये बाण भी उठा सकूं। ये युद्ध करने से तो अच्छा होगा कि मैं मृत्यु की गोद में सो जाऊं।
अर्जुन, तुम ये भूल रहे हो कि तुम एक योद्धा हो। योद्धा का कर्तव्य है सत्य के मार्ग पर चलकर धर्म की रक्षा करना। तुम तो सिर्फ कर्म कर सकते हो, फल तो तुम्हारे हाथों में है ही नहीं।
नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मजायोज्यः कर्मणः शरीर यात्रा पिछपे न प्रसिद्धे अकर्मणः यज्ञात्रात्र कर्मणायत् लोकोयम् कर्म बंधनः। तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त संग्रह समाचार। हे पार्थ, अपना गांडी उठाओ और ये धर्म युद्ध करो। ये तुम्हारा सर्वोच्च धर्म भी है और कर्म भी।
आज आप स्वयं परमात्मा के दूत के रूप में आए हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सत्य ही है, भगवान पर निर्भर होकर किया गया कर्म किसी पुण्य से कम नहीं है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
अर्जुन, हमारी इस मुलाकात को सदा याद रखना और लोक सेवा के इस कार्य को अविराम करते रहना।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सब जीवों के तुम्हीं सहारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सब जीवों के तुम्हीं सहारे। धर्म युद्ध का साहस पाया, धर्म युद्ध का साहस पाया। जब जब ये मानव मनवाहारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। सब जीवों के तुम्हीं सहारे।
कृष्ण वचन से शक्ति पाओ, जब मन हो कमजोर। कलयुग है कितना घनघोर।
अरे प्रभु, ये क्या आप स्वयं अपने पैर दबा रहे हैं? कहां है माता लक्ष्मी?
मुनिवर, ये कलयुग का ही प्रभाव कुछ ऐसा है। ये जगत के संचालक विष्णु से ज्यादा लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। देवी अपने भक्तों के पास पूजन में गई है, इसीलिए हमें स्वयं अपने पैर दबाने पड़ रहे हैं।
अरे प्रभु, ये घंटी की आवाज कहां से आ रही है?
अरे मुनिवर, आप शायद भूल गए कि आप धरती पर हैं। यह आवाज पृथ्वी लोक से ही आ रही है। जरा सामने देखिए, जाइए जाइए, इस मंदिर में मेरी पूजा आरंभ होने वाली है। आप भी उसका पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है प्रभु, मैं चलता हूं।
साहब, बहुत जोरों की प्यास लगी है, जरा यह पानी पिला देना, लाचार होना है।
छी 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 छी, अशुद्ध कर दिया। पूजन करने जा रहा था, घर जाकर दोबारा स्नान करना पड़ेगा। चलो हटो, ये पानी नहीं गंगा जल है। गंगा जल पवित्र है। बड़ी दूर काशी से लेकर आया हूं अभिषेक के लिए। आज शिवरात्रि है, तुझे ये गंगा जल पिला दिया तो अंदर के खाली हाथ जाऊंगा। चलो हटो हटो।
नारायण नारायण, प्रणाम महात्मन। अरे भाइयों, देखो देखो, यह सज्जन कितने बड़े भक्त हैं। भगवान के अभिषेक के लिए काशी से गंगा जल लेकर आए हैं।
नहीं नहीं, बात बस ये है कि हम पूरे विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं। हमारा नियम तो यही है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना उठानी पड़े, पर ब्राह्मण धर्म का पालन तो करना ही पड़ता है।
हाँ, भले ही भगवान कठिनाई के बजाय सरलता से ही क्यों ना प्रसन्न हो जाएं।
क्या मतलब है आपका?
आपने ब्राह्मण धर्म का तो पालन कर लिया, पर मानवता का धर्म? आपको क्या लगता है, जो अंदर बैठे हैं मूर्ति के रूप में वही भगवान हैं? नहीं,
आप देह रूपी नारायण को दुत्कार कर देव रूपी नारायण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यही तो मानव जाति का दुर्भाग्य है। हर युग में ईश्वर मानव रूप लेकर उनके बीच रहकर निरंतर अपने जीवन से संदेश देते रहे हैं, जीवन के मूल्यों को दोहराते रहे हैं, पर हम आज भी करुणा, दया और सहानुभूति को छोड़कर देह को प्राथमिकता देते हैं। हम इंसान के साथ उसके देह की दशा के हिसाब से व्यवहार करते हैं और यह भूल जाते हैं कि उनके अंदर वही एक दिव्य आत्मा है जो इस सृष्टि की पालनहार है, अर्थात आपके भगवान हैं।
पर गंगा जल चढ़ाना तो मेरा धर्म है।
नहीं भाई, यही भूल आज हर मनुष्य कर रहा है। जिसे आप अपना धर्म कह रहे हैं वो तो महज एक धार्मिक क्रिया है, धर्म नहीं। मनुष्य का सबसे पहला धर्म है किसी प्यासे को पानी पिलाना, न कि तिरस्कार करना।
पर मेरे साई तो शिव के अवतार है और मैं उन्हीं को गंगा जल चढ़ाने आया हूँ। आपसे बात करने के चक्कर में शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, तो पहले मैं अपने साई को गंगा जल चढ़ा के आता हूँ।
सबका मालिक एक, तो आप शिरडी के साई बाबा के भक्त हैं, तो चलिए आज हम आपको उन्हीं के जीवन का एक किस्सा सुनाई देते हैं, आइए।
अरे क्या कहा, बाबा की बात? हाँ हाँ, बताओ बताओ, अब तो मैं अपने साईं की बात सुनकर ही जाऊंगा।
बाहर से एक दीनदयाल आया है, मुझसे मिलिए, बुलाकर लाओ उसे मेरे पास।
जी बाबा, अभी लाया।
आओ दीनदयाल, कैसे हो? बेटी की शादी की तैयारियां हो गई?
आप तो जानते हैं बाबा, उसकी शादी 2 दिन बाद है। आपसे प्रार्थना है बाबा कि आप शादी में जरूर आएं और अपनी बच्ची को नए खुशहाल जीवन के लिए आशीर्वाद दें।
हाँ ठीक कहा तुमने, वो तो मेरी ही बच्ची है ना, तो अगर इतने प्यार से आमंत्रित करता है मैं तेरे घर जरूर आऊंगा शादी में, पर तू मुझे पहचान तो लेगा ना?
बाबा हम लोग तो आंखें बिछाए आपकी प्रतीक्षा करेंगे।
पर इतने लोगों में भूल मत जाना मुझे।
बाबा आप तो हमारे भगवान हैं, भगवान को भला कोई भूल सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं।
अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक।
अरे अरे, यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो तुम?
अरे सेठ, तेरी बेटी की शादी की दावत हमें भी मिल जाए, हम भी उसे दुआ देंगे।
समझा, शादी में खाना खाने आए थे, पहले मेरे साई खाएंगे, फिर मेहमान खाएंगे और फिर तुम जैसे भिखारियों को मिलेगा, और वो भी अगर बचा तो।
जैसी तेरी मर्जी सेठ, अल्लाह।
पूरा कार्यक्रम हो गया, बाबा तो अभी तक आए ही नहीं। ये तो कभी भी नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ वचन दिया हो और उसे पूरा न किया हो। चलो एक बार बाबा से जाकर मिल ही लूं।
हो गई शादी धूमधाम से, सब कुछ अच्छे से निपट गया?
बाबा शादी तो हो गई पर सब कुछ अधूरा रह गया। आपने मुझे शादी में आने का वचन दिया था पर आप तो आए ही नहीं, मैं आपकी आखिर तक प्रतीक्षा कर रहा था।
अरे तू इतनी जल्दी भूल गया? मैं तो आया था पर तू ही नहीं पहचान पाया, और तूने कहा था अगर बचा तो मिलेगा।
ओ बाबा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ।
जा, तेरा भला।
अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है, भगवान तो किसी भी रूप में बंधे नहीं है, वो तो सभी में है, सारे रूप उन्हीं के हैं। आज मैं अपनी पूजा यहीं पर कर लेता हूं, इस प्यासे को पानी पिलाकर। हे भगवान, ये गंगाजल तुम्हें अर्पित है, लो बाबा ये जल पी लो।
अब आप सही अर्थों में अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, भविष्य में भी आप मानवता का धर्म निभाते रहें।
रहम नजर करो, रहम नजर करो, अब मोरे साई तुमने ही प्रेम की ज्योत जलाई। रहम नजर करो, भेद भाव में जब भी जनता खोई, भेद भाव में जब भी जनता खोई, तुमने ही साई मानवता सिखाई, मानवता सिखाई। ये जीवन मिलता है प्रभु से, चलने उन्हीं की ओर, कलयुग है कितना घनघोर।
अरे अरे सुनो तो, चुपचाप बड़े चलो, मुड़कर मत देखना, वही है जगदीश, वैज्ञानिक जगदीश।
हाँ भाई, अगर इसने एक बार पकड़ लिया तो फिर नहीं छोड़ेगा।
इतने प्रश्न करता है कि दिमाग पक जाता है,
लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी चकरा जाएं।
पर इसकी यह हालत हुई कैसे? दिखता तो अच्छे घर का है।
हाँ भाई, पढ़े लिखे संपन्न परिवार का है, यह भी पढ़ाई में बचपन से ही बहुत होशियार था। माता पिता सबसे कहा करते, हमारा जगदीश वैज्ञानिक बनेगा, खूब पैसे कमाएगा। बस सारा दिन पढ़ो पढ़ो कहते रहते। इसने भी पढ़ाई को जुनून बना लिया और अब ये हालत हो गई है कि कुछ समय से इधर उधर भटकता फिरता है और लोगों से प्रश्नों के उत्तर मांगता रहता है।
फिर पढ़ाई का क्या हुआ?
भैया, विज्ञान के अपने सवालों में ये ऐसा उलझा कि आगे पढ़ ही ना सका।
अरे अरे सुनो तो, आप कौन हैं? क्या आप ज्ञान विज्ञान के विषय में कुछ जानते हैं? साइंस, साइंस, मैंने साइंस बहुत पढ़ा है, पर कुछ प्रश्नों के उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिले।
ज्ञान तो पूर्ण है, विज्ञान का भी अंदाजा है थोड़ा बहुत। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? पूछो।
मुंह में ये पानी आ रहा है, कैसे रोका जा सकता है? इसका आना ना आना, बनना ना बनना, क्या कंट्रोल किया जा सकता है?
शायद नहीं।
मतलब आपको पता ही नहीं है? चलो कोई बात नहीं, ये बताइए कि मेरे पिताजी हैं, उनके दांत टूट गए हैं, नए दांत कैसे उगाए जा सकते हैं? डॉक्टर कहते हैं नकली लगवा लो, पर मुझे उनके नए दांत ही उगाने हैं। अच्छा छोड़िए, ये बताइए हवा पर कैसे लिखा जा सकता है? अच्छा देखिए, शरीर में जो खून दौड़ रहा है उसका रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल अगर कहीं मिल जाए तो उसे मिलाकर हम खून नहीं बना सकते क्या?
भाई रुको, जरा ठहरो, पहले ये बताओ मानव जीवन का क्या उपयोग है?
अरे वही तो कह रहा हूँ, पढ़ो लिखो कमाओ खाओ मौज करो। तभी तो चाहता हूँ कि पिताजी के दांत उग जाए, भाई की टूटी टांग जुड़ जाए, सांस शरीर से निकल जाती है
कह देते हैं मर गया। अरे भाई दोबारा सांस डालो, शरीर के अंग बदल देते हैं। सांस नहीं डाल सकते, यही तो मेरा प्रश्न है, कोई समझता ही नहीं है।
देखो भाई, जहां साइंस की दुनिया खत्म होती है वहां साई काम करते हैं।
साई? साई कौन है?
वे इस सृष्टि के जन्मदाता हैं। कोई उन्हें अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर, कोई यीशु कहता है, कोई गुरु नानक, कोई बुद्ध कहता है तो कोई महावीर। परंतु हमें सिर्फ नाम तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें उनके संदेशों को हृदय में उतारना है और यही बतलाने। साई अवतार में वे हमारा मार्गदर्शन करने स्वयं आए। अब तुम मेरे साथ चलो, वहां तुम्हारी सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो जाएगा। इस शरीर से ज्यादा मूल्यवान मूल्यों का खजाना तुम्हें मिलेगा, चलो।
पर ये मूल्य क्या है? क्या ये रुपया पैसा है?
नहीं। पर बताओ, कोई तुमसे प्रेम से बात करे तो तुम्हें कैसा लगता है?
बहुत अच्छा। सच तो यह है कि आज बहुत दिनों के बाद किसी ने मुझसे प्रेम से बात की है, वरना लोग तो मुझे सिरफिरा कहते हैं। पर साइंस में तो प्रेम की बात कहीं नहीं है, क्या ये कॉमर्स में पढ़ाया जाता है?
नहीं। ये साई शिक्षा है, तभी कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ आओ।
साई राम, आइए आइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए।
धन्यवाद। क्या मुझे और थोड़ा मिलेगा?
जी हाँ अवश्य, आप भरपेट खाइए।
भाई आप सब कौन हैं? आप किसके लिए काम करते हैं?
भाई हम भी आपकी ही तरह एक साधारण इंसान हैं, और ये काम हम स्वयं के लिए करते हैं, इससे हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है।
पर क्या आप लोग कोई रोजगार नहीं करते?
क्यों नहीं करते? हम सब अपनी अपनी नौकरियों व व्यवसायों में संलग्न हैं, पर कुछ समय निकालकर अपने साईं के द्वारा बताए गए मार्ग, सबसे प्रेम, सबकी सेवा कर हम मानवता का धर्म निभाने का प्रयास भी कर रहे हैं।
सच तो यह है कि साईं ने हमें सिखाया कि अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, पर सच्चा मनुष्य वही है जो सेवा में जीवन लगा दे, और इसमें बहुत आनंद है भाई, बहुत आनंद है।
कृपया मुझे बताइए कि साईं बाबा कौन है, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ?
साईं तो अंतरवासी हैं भाई, तुम्हारे हृदय की गहराई में, जहाँ प्रेम के सिवा कुछ नहीं है, तुम उनके दर्शन कर सकते हो।
इस घोर कलयुग में जब झूठ, ईर्ष्या, लालच जैसी राक्षसी प्रवृत्तियां हर एक मनुष्य में पल रही है, ऐसे में धर्म के रक्षण के लिए अगर ईश्वर असुरों का विनाश करते तो संपूर्ण मानव जाति का अंत होना निश्चित था। इसीलिए महादेव श्री शंकर ने अनगिनत पुण्यात्माओं की प्रार्थनाओं के फल स्वरूप साई अवतार धारण किया है। शिरडी साई के रूप में स्वयं शिव शंकर, सत्य साई के रूप में शिव शक्ति, और प्रेम साई के रूप में शक्ति, मानव रूप में ईश्वर के अवतार हैं।
इस अवतार का अस्त्र जानते हो भाई? प्रेम का अस्त्र। साई अवतार ने प्रेम की असीम शक्ति से अनगिनत मानव हृदयों का रूपांतरण किया है और अनवरत कर रहे हैं। उनको जानना चाहते हो तो खुद को पहचानो, उनको देखना चाहते हो तो खुद में देखो, हर जीव में देखो। वे तो शाश्वत, सनातन, कण कण में बसने वाले हैं, तुम्हें और क्या बताएं उनके विषय में। हरि अनंत, हरि कथा अनंता।
आज मुझे जीवन के सारे उत्तर मिल रहे हैं। अच्छा भाई, वो वहां क्या हो रहा है?
वहां डॉक्टर साहब रोगियों की निशुल्क जांच कर दवा दे रहे हैं।
अरे विजय भैया, आप यहाँ?
हाँ, तुझे पता है मुझे एक अनजान व्यक्ति की सहायता से नौकरी मिल गई। उसी ने मुझे कहा जब और जहां मौका मिले किसी की मदद अवश्य करना। अब मैं जान गया हूँ भाई, मौके पर मिली मदद किसी का जीवन बदल सकती है, पर तुम यहाँ कैसे?
भैया, मैं तो विज्ञान की भूल भुलैया में पागल हुआ जा रहा था। हर चीज का कारण और तर्क ढूंढना ही मेरा जुनून हो गया था। ये दुनिया तो कुछ और ही है भैया, यहाँ तो सब पढ़े लिखे होने के बाद भी छोटे छोटे कामों में आनंद पा रहे हैं। ये खजाना तो मुझे उस व्यक्ति की मदद से मिला है, पर वाकई ये बहुत मूल्यवान है। मैं तो शरीर के कल पुर्जों और धन को ही जीवन समझ रहा था।
आओ मेरे साथ। साईराम डॉक्टर साहब, ये मेरा भाई जगदीश है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, विज्ञान का कीड़ा।
कैसे हो जगदीश? अब अच्छा हूँ, और कीड़ा भी मर गया, पर कोई दवा देनी हो तो दे दीजिए।
तुम्हारी दवा तो यही है कि विज्ञान को अपना सेवक बनाकर रखो और भगवान को अपना स्वामी। बस सेवा करते चलो और मालिक को अर्पण करते चलो, तभी कोई मानसिक शारीरिक कष्टों का अनुभव नहीं होगा। विज्ञान मानव जीवन की राह तो आसान बनाता है, परंतु इसे समझकर सही उपयोग करना ही हमारा धर्म है। ये तो मानव का गुण है। विजय, जाओ इसे सबसे मिलवाओ, तब तक मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ।
अरे पिताजी, आप यहाँ नारायणों के जूठे पत्तल उठा रहे हैं, और आपका ब्राह्मण धर्म, उसका क्या?
हाँ बेटा, एक अनजान सज्जन मुझे धर्म का मर्म समझा गया। तू सही था मेरे बच्चे, धर्म का असली मर्म तो प्रभु के साथ संबंध स्थापित करना है। वे तो सभी के हृदय में रहते हैं। मानव रूपी माधव की निष्काम सेवा ही हमारा सच्चा धर्म है।
पिताजी, मैं भी जब आप सबकी बातें सुनकर हताश हो गया था, तो एक व्यक्ति ने मुझे एहसास दिलाया कि निष्काम कर्म ही तो मेरा सच्चा धर्म है।
नारायण नारायण। मनुष्य जब जब संसार के मायाजाल में उलझकर भटकने लगता है, धर्म अधर्म नीति अनीति का भेद समझने में असमर्थ होने लगता है, तब तब मानव जाति के कल्याण के लिए श्रीमन नारायण मानव रूप धरकर हमारे बीच अवतरित होते हैं। आइए हम अपने अपने इष्ट को अपने हृदय में सदा के लिए स्थापित कर अपने जीवन को उनका संदेश बनाएं और हर दिन उनका अवतरण बनाएं।
हर युग में जब मानवता को भूला है इंसान, सत्य धर्म का मार्ग दिखाने प्रकट हुए भगवान। कलयुग में आए नारायण, साई दयानिधान, मन में प्रेम का दीप जलाकर आओ करे गुणगान। साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम।
धन्य हुए हम साई युग में, हमने जन्म है पाया, जन्मों के जब भाग्य खुले तो आज ये शुभ दिन आया, आज ये शुभ दिन दिन आया।
धन्य हुए हम साई युग में, हमने जन्म है पाया। जन्मों के जब भाग्य खुले तो आज ये शुभ दिन आया, आज ये शुभ दिन आया। साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम। छोड़ के मन के विकार सभी, साई प्रेम को पाले, साई प्रेम को पाले। हर मानव के मन में विराजे, ईश्वर को पहचाने, ईश्वर को पहचाने। छोड़ के मन के विकार सभी, साई प्रेम को पाले, साई प्रेम को पाले। हर मानव के मन में विराजे, ईश्वर को पहचाने, ईश्वर को पहचाने। जीवन अर्पण कर दे उनको, ऐसा अवसर पाया। जन्मों के जब भाग्य खुले हो, आज ये शुभ दिन आया, आज ये शुभ दिन आया। साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम।
यह है रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी और आप एशिया स्ट्रीम पर प्रशांति निलयम से हमारा सीधा प्रसारण सुन रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, साई संजीवनी नामक इस नाटक के साथ ही सीधे प्रसारण के अंतर्गत हमारा हिंदी भाषा में होने वाला आज का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। यह नाटक मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के भक्तों द्वारा गत वर्ष 23 दिसम्बर को साई कुलवंत हॉल में प्रस्तुत किया गया था। हिंदी भाषा में हमारा अगला कार्यक्रम पुनः मंगलवार को शाम 7:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। यदि आप हिंदी कार्यक्रमों को स्वेच्छानुसार सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.radiosai.org/hindibroadcast पर जाकर उन्हें डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, रेडियो साई टीम से मैं अभिषेक अब स्वामी से आज्ञा और आप सबसे विदा लेता हूँ। कार्यक्रमों की श्रृंखला को अब विशु भाई अंग्रेजी भाषा में एक बार पुनः आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहिए रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी की एशिया स्ट्रीम पर हमारा सीधा प्रसारण। धन्यवाद। जय साई राम।